श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है अभी है मेरे साथ। ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है अभी है मेरे साथ। जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया, जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया, और हमारी जिंदगी को जीवन दान दिया। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों है मेरे साथ। छोड़ा उसने स्वर्ग लोक को, आया था धरती पर, खुद का उसने बलि किया है क्रूस पे प्राण को देकर। छोड़ा उसने स्वर्ग लोक को, आया था धरती पर, खुद का उसने बलि किया है क्रूस पे प्राण को देकर। सारे दाग धो दिया पापों का हम पर से, यीशु ने हमको साफ किया धोकर अपने लहू। ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है अभी है मेरे साथ। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है अभी है मेरे साथ।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से जकरयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के अध्ययन में हमने पिछले दिनों में देखा है कि किस प्रकार परमेश्वर अपने दास के माध्यम से इसराइलियों तक अपने वचन को पहुँचाता है और हमने दर्शन की बातों को भी देखा है। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, विचार करते हैं, हमारी विनती है प्रभु जी कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर आपके वचन को सुनने के लिए रेडियो के निकट में बैठे हैं, अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुँचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, वे सत्यता को पहचानने पाए, उनकी आत्मिक आँखों को खोल दे ताकि वे सत्य को देखने पाए, ग्रहण करने पाए। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए जो इस घड़ी बीमार अवस्था में हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं, आप उनके भी सुधि ले, वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें, उनकी सहायता करें, ताकि एक एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इन दिनों जकरयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने एक विचित्र बात देखी, महायाजक यहोशू को मुकुट पहनाया जाना। जी हाँ, उन्हें वास्तव में जरुबाबेल को राज मुकुट पहनाना था, क्योंकि वह एक शासक भी था और दाऊद के वंश से भी आता है। परंतु परमेश्वर कहता है कि मुकुट यहोशू महायाजक के सिर पर रखने के बाद, जी हाँ, कहता है कि यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बना रहे। किस बात के स्मरण के लिए? कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु एक दिन आकर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा और याजक एवं राजा दोनों भूमिकाएं निभाएगा। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जकरयाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। ध्यान दीजिए, कहता है कि फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे। इस पद पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर मेरिल अंगर कहते हैं, दूर बेबीलोन से प्रतिनिधि मंदिर के निर्माण में सहायता देने के लिए सोना चांदी लेकर के आएंगे। यह यरूशलेम के मंदिर के लिए जकरयाह की भविष्यवाणी है। यह मंदिर सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन होगा, जिसमें दूर दूर से अन्य जातियां भेंट लेकर आराधना के लिए आएंगी। यशाया प्रभु राज में अन्य जातियों द्वारा यरूशलेम में आकर आराधना करने की चर्चा करता है, जिसे हम यशाया नबी की पुस्तक 2:2 में पढ़ते हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसी अध्याय के 12-13 में वह कहता है कि प्रभु यीशु जो शाख है वह परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करेगा, और यहां 15 में लिखा है दूर दूर के लोग आ आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे। उस समय जाति जाति के लोग मंदिर निर्माण में अपना पैसा लगाकर सहायता करेंगे। जी हाँ, हमें यह अंतर देखना है क्योंकि केवल प्रभु यीशु ही मंदिर का निर्माण करेगा। यशाया की पुस्तक 56 उसके 6-7 में हम सब पढ़ते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले जाकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा, उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं, लिखा है और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि इसका अर्थ यह है कि इस भविष्यवाणी की पूर्ति उनकी आज्ञा पालन पर निर्भर करेगी, क्योंकि यह भविष्यवाणी परमेश्वर की अनंत योजना और उसके अनंत उद्देश्य में है। इसकी अपेक्षा इसका अर्थ यह है कि इसमें उनकी सहभागिता उनके विश्वास और आज्ञा पालन पर निर्भर करेगी। जकर्याह की पुस्तक का प्रथम मुख्य भाग यहां पूरा करते हुए हम इसे भविष्यवाणी और इतिहास के संदर्भ में देखें तो यह अच्छा होगा। यदि हम भटक गए तो वचन में व्यक्त परमेश्वर के एक महान सिद्धांत से और एक महान शिक्षा से हम चूक जाएंगे। अतः भविष्यवाणी के शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि वे जकर्याह की इस पुस्तक का अध्ययन अति सावधानी से करें कि वे विचित्र एवं निरर्थक व्याख्याओं से बचे रहें। मेरे प्रियो, जकर्याह के दर्शन अत्यधिक प्रतीकात्मक हैं, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे पूर्व काल के एक भविष्यद्वक्ता के अव्यवस्थित स्वप्न हैं। वे जो उसके इन दर्शनों को एक दूसरे से अलग मानते हैं, वे अपनी इच्छा से उनकी व्याख्या करने की स्वतंत्रता का बोध करते हैं। उसके किसी भी दर्शन को अलग करके व्याख्या करना पथ भ्रष्ट होना है। जी हाँ, हमें भविष्यवाणियों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्मरण रखना है। भविष्यवाणी किसी का अपना अर्थ निर्धारण नहीं है, अर्थात उस भविष्यवाणी को संपूर्ण भविष्यवाणी के परिप्रेक्ष्य में देखना अति आवश्यक है। हमें गांठ बांध लेना है कि जकर्याह को दिए गए सब दर्शन परस्पर संबंधित और संयोजित हैं। उनका अर्थ स्थानीय परिस्थिति से संबंधित है, परंतु वे इतिहास की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं। वे इस्राएल जाति का भविष्य प्रकट करते हैं, उनके बैरियों का विनाश, उनका शोधन और उनकी महायाजकीय गवाही का पुनः स्थापन। इस भाग के अंत में पृथ्वी पर प्रभु यीशु के आगमन और राज्य स्थापित करने के लिए उसका याजक राजा होने की भविष्यवाणी है। मेरे प्रियो, यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने जकर्याह के युग में मंदिर निर्माण कार्य में निराश इसराइलियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए दी थी। वे काम में बाधाओं के कारण ही निराश नहीं थे। उनका मंदिर सुलेमान के मंदिर की तुलना में नगण्य प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जिन लोगों ने उसके प्रथम मंदिर को देखा था उन्होंने इस मंदिर की तुलना उससे की, और यही कारण था कि वे निराश थे। जो उनकी निराशा का एक और कारण था, उन्होंने बेबीलोन और मादी फारसी राज्यों के अन्य जाति विशाल मंदिर भी देखे थे। इस समय वे शांति में वास कर रहे थे और यह शांति उनके लिए मंदिर निर्माण के लिए एक सुलभ समय था। अब मैं आपका ध्यान तीन गुना अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहला है वर्तमान अर्थ और दूसरा अनंत अर्थ और तीसरा अंतिम पूर्ति। तो आइए देखें वर्तमान अर्थ। जकरिया उनकी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में कह रहा था। वह उनकी वर्तमान समस्याओं के संबंध में उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कह रहा था कि वे परमेश्वर के उद्देश्य के निमित्त उसकी अनंत योजना के भाग हैं। अतः उन्हें हिम्मत नहीं हारना है, निराश नहीं होना है। उनका यह छोटा मंदिर प्रभु राज के युग के मंदिर का मूल है, जो प्रभु यीशु स्वयं बनाएगा। अनंत अर्थ में हम देखते हैं इन भविष्यवाणियों अर्थात दर्शनों का अर्थ हमारे लिए भी है। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 3:6 में लिखा है, संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और लाभदायक है। जी हाँ, यद्यपि संपूर्ण धर्मशास्त्र हमारे लिए नहीं लिखा गया था, इसका अर्थ हमारे लिए भी है। उदाहरण स्वरूप देखें, परमेश्वर हमसे नहीं कह रहा है कि हम मंदिर बनाएं। कुछ वर्ष पूर्व कई लोग मंदिर निर्माण के लिए इसराइल पत्थर पहुंचा रहे थे। हमारा उत्तरदायित्व उन्हें पत्थर पहुंचाना नहीं है कि वे मंदिर बनाएं, अपितु यह कि उन्हें बिना हाथों के काटे हुए पत्थर प्रभु यीशु का संदेश पहुंचाएं। मती रचित सुसमाचार 21:44 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। यदि हम उस पर नहीं गिरते हैं तो मन फिराकर उसके पास आएं, क्योंकि अभी अनुग्रह का युग है। वह दिन भी आएगा जब हमें उनके दंड का भागी होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि परमेश्वर सब जातियों को दंड देता है। बेबीलोन, मादी फारसी, यूनान, मकीदुनिया आदि सब नष्ट हो गए। क्या आप इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि परमेश्वर संसार के इतिहास में कार्य कर रहा है? क्या आपको यह बोध है कि परमेश्वर हमारे देश को दंड दे रहा है? परमेश्वर जिसे चाहे उठाता है और जिसे चाहे गिराता है। कहने का अर्थ यही है कि परमेश्वर की जो आज्ञाओं का पालन करता है परमेश्वर उसको उन्नत करता है, और जो नहीं करता है वह गिरता है। आज आप सब की बातें सुनते हैं, परंतु मेरे विचार में उनमें से किसी के पास भी हमारे लिए संदेश नहीं है। परंतु आप जकरिया के दर्शनों में परमेश्वर की छोटी सी वाणी को सुन सकते हैं। जकरिया के दर्शन अर्थहीन एवं विचित्र नहीं है, उनसे प्रकट है कि परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होगा और परमेश्वर अपने उद्देश्य पूर्ति के निमित्त इतिहास में क्रियाशील है। मेरे प्रियो, अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अंतिम पूर्ति। इतिहास भविष्यवाणियों के मार्ग में चल रहा है। देखिए 12 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। यह शाख प्रभु यीशु है तो है। निर्जल भूमि से उगने वाला अंकुर वह इस पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने में फिर से आएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 4:2 में भविष्यवाणी का वचन है, उसी समय इसराइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। मेरे प्रियो, वह अपने सिंहासन पर विराजमान याजक होगा। अब कोई एक ऐसा समूह भी होगा जो किसी के घर में आराधना करता है और सच्चे मन से परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता है। उस समूह के विषय में कोई भी कुछ नहीं जानता है। यह समूह परमेश्वर की योजना और प्रयोजन में अधिक महत्वपूर्ण है अपेक्षा उनके जो बड़े बड़े नगरों में जागृति सभाएं करते हैं। यह बात सबकी समझ से बाहर है क्योंकि संसार परमेश्वर के दृष्टिकोण से नहीं देखता है। और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सोच और मनुष्यों की सोच में आकाश और पाताल का अंतर है। मेरे प्रियो, एक दिन विश्वासियों का यह समूह स्वर्ग की मंडली के साथ स्तुति करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5:9-10 में लिखा है, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने के योग्य है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जी हाँ, हम इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। संसार कुछ विश्वासियों को अनदेखा करेगा परंतु वे परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के निमित्त अति महत्वपूर्ण है। अतः जकरिया की पुस्तक का यह अंश हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने में सहायता प्रदान करता है। इस महान बाइबल अंश में आज आपके और मेरे लिए भी संदेश निहित है कि प्रभु आएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। मेरे मित्रों, क्या आज आप इस पर विश्वास करते हैं? इस बात को जाने कि वह न्याय करेगा और जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वह उसे उन्नत भी करेगा। इस बात को ध्यान में रखें कि वह सबका न्याय करता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आज मुझे और आपको भी इस पर विचार करना है, निर्णय लेना है कि मेरे कार्य, मेरे व्यवहार, मेरा जीवन किस प्रकार का है। संसार आपको नहीं देखती है, संसार आपसे कुछ नहीं कहती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु परमेश्वर अपने तरीके से आपका न्याय करेगा। मेरे श्रोता मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के अनुसार आप एक सही निर्णय लेंगे और अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर, 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।
गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने सहारा बना अपने पास मुझे बुलाया, इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहा कर मुझे पापों से शुद्ध किया, मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम।